नमस्कार श्रोताओ, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन लेकर हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं और आशा करते हैं कि आप सभी आज का बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सुनने के लिए तैयार हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से भजन संहिता नामक पुस्तक का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि इस अध्ययन के द्वारा आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए श्रोताओ, आज के बाइबल अध्ययन की ओर ध्यान लगाएं और आत्मिक लाभ प्राप्त करें।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे विश्वास है कि आप सब भी परमेश्वर की निकटता में रहते हुए कुशल पूर्वक हैं और हमेशा की तरह आज फिर से एक बार परमेश्वर के वचन में से सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मित्रों, मैं आप सबका इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और विशेष करके अपने उन सभी नए मित्रों का भी जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम इन दिनों बाइबल में से भजन संहिता नामक पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं। पिछले अध्ययन में हमने भजन संहिता 133 का अध्ययन किया था। आज हम भजन संहिता 134 से अध्ययन आरंभ करेंगे, जिसका विषय है तीर्थ यात्री का अंतिम स्तुति गान। यह तीर्थ यात्री की यात्रा का अंतिम भजन है। अब वह मंदिर में आ चुका है और जन समूह के साथ खड़ा होकर अपनी वाणी में ऊंची स्तुति करता है। यह एक महान आमीन है, तीन गुना आमीन। तो आइए आप मेरे साथ भजन संहिता 134 उसके एक पद को पढ़िए। लिखा है, हे यहोवा के सब सेवकों सुनो, तुम जो रात रात को यहोवा के भवन में खड़े रहते हो, यहोवा को धन्य कहो, अपने हाथ पवित्र स्थान में उठाकर यहोवा को धन्य कहो। मेरे प्रियो, मैं आपको फिर स्मरण कराना चाहता हूँ कि यह तीर्थ यात्री जहाँ से आया है वह स्थान उसके लिए कष्टकारी था। वहाँ के लोग उस पर संदेह करते थे, उसके विषय में बुरी बातें कहते थे और उसके बारे में झूठी अफवाहें फैलाते थे। उसका पड़ोसी अच्छा नहीं था, परंतु अब वह यरूशलेम में प्रवेश कर चुका है। वह पवित्र स्थान में खड़ा होकर परमेश्वर की स्तुति करते हुए हाथ उठाकर उसे धन्य कह रहा है। अब हम भजन संहिता 133 के तीन पद में पढ़ते हैं, यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का कर्ता है, वह सियोन में से तुझे आशीष देवे। मेरे मित्रों, तीर्थ यात्री परमेश्वर को धन्य कहता है और बदले में वह अपने जीवन में परमेश्वर की आशीषों की आशा रखता है। यह एक महान आराधना का गीत है और इसे हमारे स्तुति गानों में अवश्य ही जोड़ना चाहिए। मेरे विचार में एक सेवानिवृत्त प्रचारक का श्राप है कि वह सदैव अन्यों को सुझाव देता है कि आराधना कैसे करें, चाहे उसने स्वयं वैसा किया हो या ना। मैं इन सेवानिवृत्त प्रचारकों के विषय में इसलिए जानता हूं कि अनेक सेवानिवृत्त प्रचारक जो कलीसियाओं के सदस्य भी हैं आते हैं, मैं उनमें यह भी देखता हूं तो मुझे पता चलता है कि अत्यधिक औपचारिक था, क्योंकि उन्होंने आगे कुछ भी नहीं किया। मेरे कहने का अर्थ यह नहीं कि हमें आराधना में दौरे पड़े, परंतु कुछ लोग अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए गीत नहीं गा सकते हैं। मुझे आराधना में पुतले के समान खड़ा होना पड़ता है, क्योंकि मैं गा नहीं सकता या ऊंची आवाज में जैसे लोग गाते हैं वैसे नहीं कर पाता, परंतु जो गाना मैं गा सकता हूं मैं गाता हूं। और जब मैं गाता हूं तो कई लोग पलट कर मुझे देखते हैं। मेरी आवाज इतनी बुरी तो नहीं है, कभी कभी मेरा मन कहता है यह की स्तुति करो, हालेलुया, परमेश्वर कैसा महान है, परमेश्वर भला है। हमें अपनी आराधना में अनौपचारिकता लाना है, विचारों को प्रकट करने की स्वतंत्रता देना है। मेरे प्रियो, हम कठोर न बने, हम आराधना करें तो कृपया हृदय से उसकी आराधना करें। यहाँ पर अध्याय 134 समाप्त होता है। अब हम देखेंगे भजन संहिता 135, जिसका शीर्षक है यह की स्तुति करो। तीर्थ यात्रियों के भजनों के बाद अब हम स्तुति के भजनों पर आते हैं। यह भजन हालेलुया का भजन है। यह भजन हालेलुया का दूसरा अंश है और इस भजन में इसराइल अतीत की मुक्ति के लिए परमेश्वर की स्तुति करता है। यह परमेश्वर की स्तुति का एक महान भजन है। तो आइए आप मेरे साथ भजन संहिता 135 उसके एक से तीन पद को पढ़ें। लिखा है, यह की स्तुति करो, यहोवा के नाम की स्तुति करो, हे यहोवा के सेवकों तुम स्तुति करो, तुम जो यहोवा के भवन में अर्थात हमारे परमेश्वर के भवन के आंगनों में खड़े रहते हो। यह की स्तुति करो क्योंकि यहोवा भला है, उसके नाम का भजन गाओ क्योंकि यह मनोहर है। मेरे मित्रों, हम परमेश्वर को भला कहने में कमी रखते हैं। क्या आपने आज किसी से कहा है कि परमेश्वर भला है? वह निश्चय ही भला है। यह भजन उसकी स्तुति की पुकार है। भजन संहिता 135 के 6 और 7 पद में लिखा है, जो कुछ यहोवा ने चाहा उसने आकाश और पृथ्वी और समुन्दर और सब गहरे स्थानों में किया है। वह पृथ्वी की छोर से कुहरे उठाता है और वर्षा के लिए बिजली बनाता है और पवन को अपने भंडार में से निकालता है। परमेश्वर ही है जो मौसम को निर्धारित करता है। मौसम विशेषज्ञ ऐसा नहीं कर सकता, इसलिए उसके अनुमान में गलती होती है। वह मुख्यालय के संपर्क की अपेक्षा मशीनों के संपर्क में होता है और वह एक शिक्षित अनुमान लगाता है। परंतु परमेश्वर ने मौसम को बनाया है, वह सृजनहार है। वह मौसम का ही नहीं संपूर्ण जगत को अपनी इच्छा के अनुसार चलाता है। संभव है कि आपको यह अच्छा नहीं लगता हो, तो आप हट क्यों नहीं जाते? आप किसी और जगत में चले जाएं या अपना ही जगत रचकर अपनी इच्छा से उसे चलाएं। यह परमेश्वर की सृष्टि है और मेरी सलाह माने तो उससे समझौता कर लें और सृजनहार को स्वीकार कर लें, क्योंकि वही मनुष्य का मोक्षक अर्थात उद्धार करता है। हमारे अनेक प्रश्नों के उत्तर परमेश्वर नहीं देता है। वह हमसे कहता है कि हम उस पर भरोसा करें और विश्वास कर जीवन जिए। मित्रों, हम आगे देखते हैं, भजनकार जीवित परमेश्वर की तुलना मूर्तियों के साथ करता है। भजन संहिता 135 उसके 15 से 18 पद में हम पढ़ते हैं, जहां पर लिखा हुआ है, अन्य जातियों की मूर्तें सोना चांदी की हैं, वे मनुष्यों की बनाई हुई हैं। उनके मुंह तो रहता है परंतु वे बोल नहीं सकती, उनकी आंखें तो रहती हैं परंतु वे देख नहीं सकती, उनके कान तो रहते हैं परंतु वे सुन नहीं सकती, न उनके कुछ भी सांस चलती है। जैसे वे हैं वैसे ही उनके बनाने वाले भी हैं, और उन पर सब भरोसा रखने वाले भी वैसे ही हो जाएंगे। मेरे मित्रों, आप अपने परमेश्वर के समान हो जाते हैं। आप किसकी उपासना करते हैं? आप किसी की भी उपासना कर सकते हैं, आवश्यक नहीं कि वह मूर्ति रूप में हो। अनेक मनुष्य सोने चांदी के उपासक हैं। यह लालच है या आधुनिक मूर्ति पूजा है। चाहे कैसा भी ईश्वर हो, वह जब तक जीवित न होगा मुंह रहते हुए भी बोलने योग्य न होगा, कान होते हुए भी नहीं सुन पाएगा। केवल जीवित परमेश्वर आपकी आवाज सुन सकता है। अब क्योंकि आप अपने परमेश्वर के समान हो जाते हैं, इसलिए जीवित परमेश्वर की उपासना करना अच्छा है। हमें उसके नाम को धन्य कहना चाहिए क्योंकि उसे यह पसंद है। भजन संहिता 135 उसके 21 पद में लिखा हुआ है, यहोवा जो यरूशलेम में वास करता है उसे सियोन में धन्य कहा जावे, यह की स्तुति करो। वह स्तुति के योग्य है। यह एक अति अनुपम भजन है। मित्रों, यहाँ पर भजन 135 समाप्त होता है और अब हम भजन 136 में देखते हैं, जिसका विषय है करुणा के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। यह भी हालेलुया का भजन है जो सृष्टि में परमेश्वर की करुणा, मुक्ति और बैरियों से युद्ध में तथा भविष्य में उसकी महिमा की स्तुति करता है। भजन संहिता 136 के 1 पद में लिखा है, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। परमेश्वर की करुणा अपरंपार है, कभी समाप्त नहीं होगी। भजन संहिता 136 के 2 और 3 पद में लिखा है, जो ईश्वरों का परमेश्वर है उसका धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। जो प्रभुओं का प्रभु है उसका धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। इस भजन का प्रत्येक पद परमेश्वर की करुणा की चर्चा करता है और परमेश्वर की करुणा का महिमान्वन करता है। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय उसके 4 पद में पौलुस कहता है, परमेश्वर ने जो दया का धनी है अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया। मुझे परमेश्वर की करुणा था दया की आवश्यकता है और वह दया का धनी है। मुझे पत्रों में लोग लिखते हैं कि उन्होंने पाप किया है। वे पूछते हैं कि आपके विचार में क्या परमेश्वर मुझे क्षमा करेगा? जी हाँ मेरे मित्रों, वह दया का धनी है। क्या आपने उससे प्रार्थना की है? यदि आपको वास्तव में क्षमा चाहिए तो वह अवश्य प्रदान करेगा। वह अपनी दया के आधार पर हमारे साथ व्यवहार करता है। यह सृजनहार परमेश्वर की स्तुति है। यहाँ ध्यान दें कि प्रत्येक पद के बाद उसकी करुणा सदा की है कहा गया है। आगे हम देखते हैं भजन संहिता 136 उसके 5 से 9 पद में, उसने अपनी बुद्धि से आकाश बनाया, उसकी करुणा सदा की है। उसने पृथ्वी को जल के ऊपर फैलाया है, उसकी करुणा सदा की है। उसने बड़ी बड़ी ज्योतियां बनाई, उसकी करुणा सदा की है। दिन पर प्रभुता करने के लिए सूर्य को बनाया, उसकी करुणा सदा की है। और रात पर प्रभुता करने के लिए चंद्रमा को और तारागण को बनाया, उसकी करुणा सदा की है। अगला भाग मिस्र के दासत्व से मुक्त कराने के लिए परमेश्वर की स्तुति है। परमेश्वर की मुक्ति के प्रत्येक चरण के बाद वह दोहराता है, उसकी करुणा सदा की है। अंत में वह कहता है कि उन्हें स्वदेश प्रदान करने के लिए परमेश्वर ने दया दर्शाई है। आइए हम भजन 136 उसके 21 और 22 पद को पढ़ें। और उनके देश को भाग होने के लिए उसकी करुणा सदा की है, अपने दास इसराइलियों का भाग होने के लिए दे दिया, उसकी करुणा सदा की है। इस भजन का अंतिम भाग आपके और मेरे लिए उतना ही अर्थपूर्ण है जितना इसराइल के लिए। भजन संहिता 136 उसके 23 से 26 पद में लिखा है, उसने हमारी दुर्दशा में हमारी सुधि ली, उसकी करुणा सदा की है। और हमको शत्रुओं से छुड़ाया है, उसकी करुणा सदा की है। वह सब प्राणियों को आहार देता है, उसकी करुणा सदा की है। स्वर्ग के परमेश्वर का धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। मेरे प्रियो, मैं आपके बारे में तो नहीं कुछ कह सकता, परंतु मेरा मन फिर से हालेलुया कहता है। हमारा परमेश्वर कैसा महान है, उसे दंडवत करके उसकी स्तुति करो। आप धूल में गिरकर स्तुति करेंगे तो वह आपको उठाएगा। मेरे मित्रों, यहाँ पर भजन संहिता 136 समाप्त होता है और अब हम भजन 137 में आते हैं, जिसका विषय है परदेश में यहोवा का भजन गाना। भजनों का पढ़ना ऐसा है जैसे विभाजित मुख्य मार्ग पर किसी मनोरम स्थान की यात्रा कर रहे हो। हम दोनों ओर नए और चिंताग्रस्त दृश्य से गुजरते हैं। प्रत्येक भजन का आरंभ एक चौराहे के समान है। हम चेतावनी को देखे बिना एक ही गीत से आगे बढ़ते चले जाते हैं और हम में अभिन्नता की भावना जागृत होती है। मार्ग सूचक के दोनों ओर दृश्य एक सा ही है। यह विशेष करके भजन संहिता 119 के बाद आरंभ होता है और यात्रा करते करते अकस्मात ही हम भजन 137 पर आते हैं और देखते हैं कि वहां तीन झंडे गड़े हैं जो कहते हैं ठहरो, देखो और सुनो। प्रस्तावना में तो हम यही कह सकते हैं कि पहला झंडा कहता है ठहरो। यह भजन प्रतिशोध का भजन है। अब कोई कहे कि ठहरो का झंडा मुझे रोकेगा नहीं, क्योंकि मैं इसका अर्थ तो समझता नहीं। प्रतिशोध का मूल अर्थ है श्राप देना। यह भजन बदला लेने की प्रार्थना है। सुनिए कि अंतिम पद में क्या लिखा है। क्या ही धन्य वह होगा जो तेरे बच्चों को पकड़कर चट्टान पर पटक देगा। मेरे मित्रों, यह लाल झंडा है। यह विमूढ़ करने वाला पद है और कठिनाई उत्पन्न करता है। अनेक जन इसे छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं और मेरे लिए इसे अनदेखा करना आसान है, परंतु यह एक ऐसा भजन है जिसे हमें रुककर ध्यान से पढ़ना है। मनुष्य के पास इस भजन के संबंध में अनेक मार्ग हैं। मुक्त विचारवादी इसे अनदेखा कर देते हैं। उनके विचार में यह बाइबल का अंश नहीं है। उनके विचार में इस भजन में जो कहा जाना चाहिए उसके विपरीत बातें लिखी हैं। अतः वे इसका त्याग कर देते हैं। वे इस गांव वाली बालक की नाई है जिसने एक भैंस खरीदी और यह सीखा कि उसका आगे का भाग महंगा है क्योंकि उसके लिए चारा लाना पड़ता है, परंतु पीछे का भाग दूध देता है। अतः उसने पैसा कमाने के लिए पीछे के हिस्से पर अधिक ध्यान दिया और आगे के हिस्से को छोड़ दिया। आप जानते हैं कि इसका परिणाम क्या हुआ। वह भैंस मर गई। यह विचार कि जो अच्छा लगे उसे रखो और जो अच्छा न लगे उसे त्याग दो न तो संतोष प्रदान करता है और न ही समस्या का समाधान प्रस्तुत करता है। दूसरा मार्ग है नवदीक्षितों का, जो कहते हैं मैं बाइबल को आरंभ से अंत तक मानता हूं, परंतु वे तीसरी भाग से परिपूर्ण या पूर्ण रूपेण अनभिज्ञ हैं। यही कारण है कि रूढ़िवादियों को निर्बुद्धि कहा जाता है और यही कारण है कि मैं परमेश्वर के वचन की शिक्षा को अत्यधिक महत्व देता हूं। यह कहना कि मैं विश्वास करता हूं एक अलग बात है और उसे जानना एक अलग बात है। तीसरा दृष्टिकोण है संपूर्ण बाइबल में विश्वास करना और उसे समझना, अर्थात परमेश्वर के कहने के अर्थ को समझना और विवरण लिखे जाने के समय उसके मन में क्या था उसे अंतर्ग्रहण करना। मैं जानना चाहता हूँ कि मैं किस बात पर विश्वास करता हूँ और उसमें व्यक्त आशा को तार्किक रूप से समझना चाहता हूँ। अब इस समझ के साथ हम भजन 137 के प्रतिशोध के भजन का अध्ययन करेंगे। यद्यपि ये विचार ऊपरी तौर पर तो भयानक प्रतीत हैं, हम इसके वास्तविक अर्थ पर ध्यान दें। दूसरा झंडा कहता है कि हम रुके परंतु देखें भी, क्योंकि भजन संहिता 137 परमेश्वर की प्रजा इसराइल के इतिहास के एक भाग का उल्लेख करता है। अतः यह एक ऐतिहासिक भजन है जो एक असामान्य बात है। इतिहास की पुस्तकों में इसराइल के बेबीलोन निर्वास के 70 वर्षों का इतिहास नहीं है। निसंदेह यर्मिया ने बेबीलोन की बंधुआई की भविष्यवाणी की थी, परंतु वह बंदियों के साथ वहां गया भी नहीं था। यहेस्केल बंदियों के साथ बेबीलोन में था, परंतु वह भविष्यवाणी करता था। अतः हम इसराइल की दशा से वहां केवल निष्कर्ष ही निकाल सकते हैं। वह इतिहास की अपेक्षा दर्शनों को अधिक महत्व देता है। उस समय दानियल बेबीलोन में था, परंतु वह दरबार में अन्य जाति राजाओं के लिए भविष्यवाणी का वचन सुनाता था। उसकी पुस्तक में बंदियों का इतिहास नहीं है। बेबीलोन में ये 70 वर्ष निशब्दता के हैं। यह इतिहास का एक रिक्त स्थान है। राजाओं और इतिहास की पुस्तकों में बंधुआई और यरूशलेम के विनाश तक का ही वर्णन है। इसके बाद इज़रा, नहेमिया और एस्तेर की पुस्तकें बंधुआई के 70 वर्षों के बाद स्वदेशवासी इसराइलियों का इतिहास सुनाती है। यह परमेश्वर की व्याख्या है कि जब उसकी प्रजा स्वदेश से बाहर हो तो उसकी घड़ी रुक जाए। अतः हमारे पास उस युग का इतिहास नहीं है। यह तथ्य भजन 137 को महान महत्व देता है, क्योंकि इस निशब्दता की खाई पर वह सेतु बनाता है। सब कुछ तो नहीं, परंतु इस समय की कुछ गतिविधियों को हम यहाँ अवश्य देख पाते हैं। तीसरा झंडा है सुनो। यहाँ एक प्रश्न है। भजन संहिता 137 उसके 4 पद में लिखा है, हम यहोवा के गीत को पराय देश में कैसे गाएं? मुझे निश्चय नहीं कि उन्हें इसका उत्तर मिला या नहीं। आज हमें इसका उत्तर अपने लिए मिलता है। जब तक कि हम कुछ शर्तों को पूरा न कर दें, हम परदेश में प्रभु का गीत कैसे गा सकते हैं? भजन संहिता 137 में इसराइल का त्रासदीपूर्ण स्थिति है, परंतु मृदुल अनुभव है। आपको इस भजन में कटु घृणा और गहरा प्रेम देखने को मिलेगा। आप यहाँ तक एक ऐसी जाति को देखेंगे जो भावनाओं के अधीन और अभिभूत है। वे यहाँ व्यक्त बातों के प्रति गहरी भावना रखते थे। आइए हम देखेंगे मुख्य अनुभव। सबसे पहले तो उनका मुख्य अनुभव है। भजन संहिता 137 के 1 पद में लिखा है, बेबीलोन की नहरों के किनारे हम लोग बैठ गए और सियोन को स्मरण करके रो पड़े। स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। बेबीलोन की नहरों के किनारे इन लोगों का अनुभव बेजोड़ था। गोशेन से लेकर यूरोप की यहूदी बस्तियों तक उन्हें परदेश में रहने के अनुभव प्राप्त हुए थे। घर से दूर परदेश में रहना क्या होता है, वे समझ गए थे कि मिस्र के ईंटों के भट्ठों से चलकर बेबीलोन की नदियों तक जाना क्या है। उन्हें दासों के डेरों में रहने का अनुभव प्राप्त हुआ था। बेबीलोन की नहरों के किनारे वे सताए गए थे। उन्होंने बंधुआ मजदूरी की थी, वहां उन्होंने कष्ट उठाए थे। बेबीलोन की नहरों के किनारे, जी हाँ, वे वहां क्या कर रहे थे? पहले तो उनका वहां कोई काम नहीं था। परमेश्वर ने तो उन्हें प्रतिज्ञा के देश में रखा था और परमेश्वर ने उनसे प्रतिज्ञा की थी कि वह उन्हें वहां अपना गवाह बनाए रखेगा, परंतु तब तक जब तक वे उसके सच्चे भक्त बने रहेंगे। वे बेबीलोन की नहरों के निकट क्या कर रहे थे? ये नहरें मनुष्य द्वारा खोदी गई थी और दजला और परात नदियों से निकाली गई थी कि खेतों में सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध हो। सूर्योदय से सूर्यास्त तक मजदूरी करने वाले यही लोग थे। वह शुष्क मरुस्थल था। बेबीलोन की नहरों के किनारे हम लोग बैठ गए। जी हाँ, यह घोर निराशा का एक कैसा चित्रण है। वे बैठने की अपेक्षा और कर भी क्या सकते थे, और सियोन को स्मरण करके वे रो पड़े। यह कैसा महान दुख है। भजन स्तुति के गीत है। भजनों में आनंद, अद्भुत विश्वास, आशा और आत्मविश्वास प्रकट है। परंतु इस भजन में नहीं, इसमें उनका विलाप गीत है और सियोन को स्मरण करके रो पड़े। यह स्तुति का गीत नहीं है, यह गहन निराशा का गीत है। सियोन को स्मरण करके रो पड़े। जी हाँ, यरूशलेम और बेबीलोन में कैसी विषमता है। यरूशलेम पर्वतों में बसा सुंदर नगर और बेबीलोन मरुस्थल में। वे अपनी इच्छा से वहां नहीं थे, परंतु इसलिए कि उनका नगर नष्ट हो गया था और उनसे अधिक शक्तिशाली राष्ट्र बेबीलोन उन्हें बंदी बनाकर पशुओं के समान हांककर मजदूरी के लिए ले गए थे। अब उन्हें अपने देश की याद आ रही थी। सियोन को स्मरण करके वे रो पड़े। वे वहां क्यों थे? अपने पापों के कारण। यदि आपको उस समय के एक और रोने वाले को देखना है तो यिर्मयाह की पुस्तक को खोलें। यिर्मयाह भी रोता था, परंतु इसमें उसका दोष नहीं है। परमेश्वर ने उसे दंड की भविष्यवाणी करने को चुना था, परंतु उसका हृदय कोमल था। उसने यरूशलेम के विनाश की भविष्यवाणी की थी, उसने उनके बंदी बनाए जाने की भविष्यवाणी की थी। परमेश्वर ने वह कठोर संदेश सुनाने के लिए एक कठोर हृदय के मनुष्य को नहीं चुना था। उसका मन एक माता के सदृश था, इसलिए परमेश्वर ने उसे चुना था। यिर्मयाह कहता है, मेरी आंखें आंसुओं की सोता हो गई थी, इस संदेश से मेरा हृदय टूट गया। परमेश्वर ने ऐसे मनुष्य को भेजा कि वे परमेश्वर के हृदय को समझ सके। विलाप गीत 1:8 में उसका अर्थनांद सुने। यरूशलेम ने बड़ा पाप किया है, इसलिए वह अशुद्ध स्त्री सी हो गई है। ये लोग बेबीलोन की नहरों के किनारे क्यों थे? उन्होंने बड़ा पाप किया था और यही कारण था कि वे वहां थे। वे कहते हैं, भजन संहिता 137:2 में लिखा है, उसके बीच के मजनू वृक्षों पर हमने अपनी वीणाओं को टांग दिया। उनका मन गाने के लिए प्रेरित नहीं हो रहा था, उन्होंने भजन गाना छोड़ दिया था। वहां उनकी गायन मंडली नहीं थी, वे गाने की अपेक्षा विलाप कर रहे थे। उन्होंने अपनी वीणाएं वृक्षों पर लटका दी थी, अब उनकी आवश्यकता नहीं थी। जी हाँ, वे बेबीलोन की नहरों के पास सियोन के गीत नहीं गा सकते थे, वे केवल यरूशलेम में भजन गाने जाते थे। वे मंदिर जाकर परमेश्वर की स्तुति गाते थे, अतः उन्होंने अपनी वीणाएं अब वृक्षों पर लटका दी थी और ये वृक्ष रोने वाले वृक्ष थी। आज अनेक विश्वासियों ने अपनी वीणाएं रोने वाले वृक्ष पर लटका दी हैं। उनका गीत खो गया है, उनके पास वीणा तो नहीं है परंतु व्यर्थ की राग अलापते हैं। मेरे विश्वासी भाइयों और बहनों, क्या आपने अपना भजन भुला दिया है? आपको शायद अपने मन फिराव के समय का गीत याद होगा, जब आप पहली बार मसीह के संपर्क में आए थे। क्या आपने आज अपना गीत भुला दिया है? यदि हाँ, तो याद रखें कि आपके पाप आपको दूर ले जा रहे हैं। मित्रों, हम आगे देखते हैं निंदात्मक अनुभव। भजन संहिता 137:3 में लिखा है, क्योंकि जो हमको बंदी बनाकर ले गए थे उन्होंने वहां हमसे गीत गवाना चाहा और हमारे रुलाने वालों ने हमसे आनंद चाहकर कहा, सियोन के गीतों में से हमारे लिए कोई गीत गाओ। मेरे प्रियो, बेबीलोन वासियों ने इसराइल के भजन गान के बारे में सुना था। इसराइल एक विशेष कारण से विश्वविख्यात था, हम कुछ देर में उसे देखेंगे। और जब वहां के निवासियों ने सुना कि मजदूर शिविर में इसराइली बंदी हैं, तब लोगों ने उन्हें देखने के लिए वहां आना आरंभ कर दिया। देखा आपने कि इसराइली लोग एक बंधुए थे और एक सर्कस की तरह लोग उसे देखने के लिए आ रहे थे। इसराइल यरूशलेम के मंदिर के लिए विश्वविख्यात था, जीवित परमेश्वर के मंदिर के कारण। यरूशलेम आने वाले वहां जीवित परमेश्वर की आराधना देखते थे, मूर्ति पूजा नहीं। वे मुक्ति और पाप क्षमा के द्वारा वहां आकर परमेश्वर की स्तुति करते थे। ऐसी आराधना न तो किसी ने देखी थी और न सुनी थी। यह समाचार संपूर्ण संसार में फैल गया था और यह सुनकर शीबा की रानी दूर देश से आई थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था। जी हाँ, पर्वों के समय इसराइली वहां एकत्र होकर भजन गाया करते थे। संभव है कि सब भजनों को संगीत से संवारा गया था। दाऊद ने गायन मंडली तैयार की थी और सैकड़ों संगीतकारों की व्यवस्था की थी। अनुमान लगाया गया है कि कभी कभी 100,000 उपासक मंदिर में और मंदिर के परिवेश में उपस्थित होकर आराधना करते थे। उन्हें सुना रोमांचकारी होता था, परंतु अब मंदिर ध्वंस कर दिया गया है और यरूशलेम उजाड़ पड़ा है। इसराइली बेबीलोन में बंधुआ मजदूर थे। बेबीलोन में अनेक यात्री आकर कहते थे, मैं इन लोगों के पर्व के समय यरूशलेम में था। वे संपूर्ण विश्व से वहां पर एकत्र होते थे, वे 100,000 के लगभग थे। जब बलियों का धुआं आकाश में उठता था, तब इन लोगों के मुंह से भजन गाने की आवाज आती थी, जिसके कारण मैं स्वर्ग में उठा लिया जाता था। मैंने कभी ऐसा नहीं सुना है। मेरे प्रियो, ये लोग सदियों से दाऊद के युग से ही संगीतकार रहे हैं। जब वे एकत्र होकर परमेश्वर की स्तुति करते थे, तब संपूर्ण संसार सुनता था। परमेश्वर चाहता था कि संसार सुने। अब जब वे बेबीलोन में बंदी थे, तब बेबीलोन वासी कहते थे, हम वहां जाकर उनका गाना सुनेंगे। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने पेड़ों पर वीणाएं लटका दी, और उन्होंने वीणाएं लटकी हुई देखी पेड़ों पर, और देखा कि वे लोग घोर निराश में बैठे हैं और गाने की अपेक्षा रो रहे हैं। और उन्होंने ठट्ठों से कहा, हमें भी सियोन का गीत सुनाओ, हमने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है, हम तो सोचते हैं कि तुम लोग अच्छे गायक हो। वे उनका मजाक करते और उन पर टीका टिप्पणी करते थे, सियोन के गीतों में से हमारे लिए कोई गीत गाओ। मेरे मित्रों, यहाँ पर हम देखते हैं कि वे परेशान किए जा रहे हैं, परंतु उनके पास उत्तर है, जिसे हम अगले अध्ययन में देखेंगे। और इससे स्पष्ट होता है कि आज हमारे लिए भी यह बहुत महत्वपूर्ण है कि यदि हम परमेश्वर से दूर हैं तो हम भी निराश हैं, यदि हम परमेश्वर की निकटता में हैं, निश्चय जाने कि वो आनंद है जो यरूशलेम में है। आज हमारे अध्ययन का समय यहाँ पर समाप्त होता है। मुझे आशा है कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने इसराइलियों के जीवन से अवश्य ही अपने जीवन में आशीष प्राप्त किया है। प्रभु आप सबके साथ हो और आप सबको आशीष प्रदान करें।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।